प्रियपंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, रुद्र गीत के अंतर्गत 44वां श्लोक चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का कल हम अध्ययन कर रहे थे। दर्शनम नो दिदृक्षो नाम देही भागवता अर्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्व इंद्रिय गुण अंजनम। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान उस आपके रूप का दर्शन कराओ जिसकी पूजा आपके भक्त करते हैं और जो आपके भक्तों को बहुत प्रिय है और जिसको देखने से सारे मन और इंद्रियों को आनंद प्राप्त हो। तो इसमें हमने कल चक्रवर्ती पाद के भाव में देखा था कि न तो चाहिए विश्व रूप का दर्शन की इच्छा नहीं है और न ही ब्रह्म का ध्यान करना है, चाहिए हमारे को चतुर्भुज रूप। ओ नो, ये तो हम कल ये श्लोक तो पढ़ चुके थे, इसके बाद वाला श्लोक था हमारा, राइट, वो था 45वां 46वां 46 भी हमने कर चुके थे, है ना, राइट, हाँ 45 46 उसी के 45 46 के अंदर हम थे जहां हम बात कल कर रहे थे कि भगवान की अर्चना पूजा। ये श्लोक हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो, कि भगवान के रूप का वर्णन है कि चार हाथ वाला रूप हो भगवान आपका, उसका हमें दर्शन चाहिए, नाक बहुत सुंदर हो, कान बड़े सुशोभित हो। तो उसके अंदर प्रभुपाद जी ने कल लिखा था कि हमारी पूजा की विधि लक्ष्मी नारायण की पंचरात्रि का विधि है और वही विधि राधा कृष्ण के लिए जब विशेष रूप से करते हैं, सामान्य नए भक्तों के लिए तो राधा कृष्ण की पूजा भी लक्ष्मी नारायण के ही विधि विधान से करनी चाहिए जैसे पंचरात्रिक विधि में है, परंतु उत्तम कोटि के भक्त जो राधा कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं भागवत विधि से, उसको कहते हैं राग मार्ग। और राग मार्ग वाले पूजा करने का अधिकार केवल वृंदावन के भक्तों को है। अब यहां से आज हमको शुरू करना था। प्रभुपाद जी लिखते हैं राग मार्ग के भक्त कौन से होते हैं, वृंदावन के वासी गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा और ग्वाल बाल, गैया, ये सब जो है ये राग मार्ग अथवा भागवत मार्ग का के स्तर के भक्त हैं। गाय भी, गाय शांत रस में है, भगवान के सेवक रक्तक पत्रक दास्य रस में है, ग्वाल बाल सखा रस में है, यशोदा मैया नंद बाबा वात्सल्य रस में है, गोपियां माधुर्य रस में है। तो ये सब रस वृंदावन में है। अब प्रभुपाद इन रसों के नाम लिख रहे हैं, ये पहले ऊपर लिखा क्या, ऊपर लिखा इनका वर्णन, अब लिख रहे हैं इनका नाम। पांच कौन से रस हैं, क्या नाम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दास्य रस, हाँ दास्य सखा वात्सल्य माधुर्य और शांत आखिर में लिखा है, तो गाय शांत रस की है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इनमें भी, इन पांच रसों में भी भागवत मार्ग वो तो विशेष रूप से वात्सल्य और माधुर्य, इसका मतलब गोपियां और नंद यशोदा आदि, और तीसरा वो भगवान के सखा जिसके लिए एक नाम लिखा है विश्रम्भ सखा। विश्रम्भ सखा का अर्थ है ऐसे सखा जो भगवान को अपने समान समझते हैं, भगवान को भगवान कभी नहीं समझते हैं, उसको कहते हैं विश्रम्भ सखा। अब प्रभुपाद जी यहां अंतर बता रहे हैं कि सखा अर्जुन भी है और सखा वृंदावन के अंदर श्रीधामा सुधामा मधुमंगल है, अंतर दोनों में है। अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो भयभीत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, ऐश्वर्य से प्रभावित हो गया, अभिभूत हो गया। परंतु वृंदावन के सखाओं ने कितने असुरों को मारते देखा, कभी आश्चर्यचकित नहीं हुए। वो तो खेल में कृष्ण को अपने समान समझ के कृष्ण हार जाता तो कृष्ण के कंधों के ऊपर भी चढ़ जाते थे। तो ऐसे जो सखा हैं वो राग मार्ग के सखा कहे जाते हैं, और ऐसे सखाओं के लिए नाम पुनः प्रभुपाद जी कहते हैं विश्रम्ब सखा। विश्रम्ब सखा जो भगवान के है वो राग मार्ग के है। तो वृंदावन की भक्ति है राग मार्ग की। अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं सावधान। क्या सावधान कर रहे हैं? बोला पहले अगर विधि मार्ग से भक्ति की नहीं, पंचरात्रि का विधि से पहले नेमू से साधन भक्ति की नहीं और सीधा ही राग मार्ग की भक्ति में गए तो बनावटी भक्त कहलाएंगे, उनको कहते हैं सहजिया। सहजिया का अर्थ है कि इतनी उत्तम प्रेम की भक्ति को सहज सामान्य समझना मूर्खता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी सहजियों का उदाहरण देके कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो कृष्ण की राग मार्ग की भक्ति को बहुत ही सामान्य बात समझते हैं, उनको प्रभुपाद कहते हैं ये असुरी प्रकृति के लोग। कृष्ण की गोपियों की लीलाओं का नकुल करते हैं और अपने काम वासनाओं को कृष्ण की लीला के रूप में करके अपने को तो नरक में डालेंगे, लिखा है प्रभुपाद लिखा है। और पुस्तक भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं राग मार्ग के भाव के, लेकिन उनका स्तर काम का होता है, इसलिए नरक गामी है ऐसे नास्तिक। इसलिए स्वयं तो नरक में जाएंगे परंतु सबको नरक में धकेल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का कहना है। इसलिए पहले विधि मार्ग से लक्ष्मी नारायण के भाव से भले मंदिर में राधा कृष्ण की स्थापना हो पर पूजा लक्ष्मी नारायण के भाव से करें। प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, कृष्ण राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण तो समाये हुए हैं तो इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो राधा कृष्ण में समाये हुए हैं। इसलिए जब हम राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण के भाव से पूजा करते हैं तो भी उसी के अंदर हैं वो। अब प्रभुपाद जी एक और दोनों में अंतर बता रहे हैं कि वैदी भक्ति में भगवान की पूजा करने में 64 अपराध हैं, उनसे बच के पूजा करनी चाहिए, उसको कहा जाता है अर्चना के अपराध, भगवान की पूजा की विधि में अपराध। परंतु राग मार्ग की पूजा में कोई अपराध नहीं है, पूजा वही राधा कृष्ण की। जैसे हम कहें कि हमारे सनातन गोस्वामी पाद अपने राधा मदन मोहन जी को कोई पूजा के लिए व्यवस्था नहीं थी तो आटा पानी में जमुना में भिगो के और कंडे में पका के और खिला देते थे, और लेकिन देखा कि भगवान की वैभव की पूजा लेने की इच्छा है तो मंदिर बना के सेवाधारियों को दे दिया, स्वयं जाके पेड़ के नीचे ले बैठ गए। तो कुछ भक्ति राग मार्ग में कोई अपराध नहीं है, पहले ये कही गई है बात। परंतु विधि में जो है बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। अगर हम अपराधों को से मुक्त नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। अब प्रभुपाद कहते हैं भगवान शंकर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन जब कर रहे हैं तो कहते हैं चारवायंत चतुर्बाहो सुजात रुचिरा आननम। चारव आयत चतुर्बाहु, इसका अर्थ है भगवान के चतुर्भुज नारायण और विष्णु का रूप है। और जब सुजात रुचिर आनन है, इसका मतलब कृष्ण का वर्णन है। वैसे विष्णु तत्व तत्व तो लाखों करोड़ों हैं, असंख्य है, परंतु जब ये सुजात शब्द आए, रुचिर आनन शब्द आए, तो समझना चाहिए ये श्री कृष्ण को लक्षित कर रहा है। अब प्रभुपाद जी कहते भगवान के चार जो भुजाएं हैं और चार भुजाओं में जो चार चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म, उसका क्या उद्देश्य है। भगवान का शंख और चक्र ना, गदा और चक्र असुरों के संहार के लिए है, पद्म और कमल और शंख भक्तों के लिए है। कमल भक्तों को लिए लक्ष्मी सुख सुविधा, उनकी सब आवश्यकता, जैसे जो उनकी जरूरत है, क्या उनकी जो सुख है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और शंख से भगवान अपने भक्तों की विजय की घोषणा करते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाकर पांडवों की विजय की घोषणा कर दी। तो शंख और कमल भक्तों के रक्षण के लिए और गदा और चक्र असुरों के संहार के लिए है। ये प्रभुपाद जी इन चार आयुधों का भगवान के हाथों में होने का वर्णन कर रहे हैं। अगर भगवान किसी असुर का वध भी करते हैं तो उनको ब्रह्म ज्योति में तो लीन करते ही है, मुक्ति तो मिलती ही है। ऐसी मुक्ति मिलती है जैसी योगियों को मिलती है, ज्ञानियों को मिलती है। वो मुक्ति तो असुरों को भी मिल जाती है, परंतु भक्त जो प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं और राग मार्ग से जो सेवा करते हैं, वो तो भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं, और जो विधि मार्ग से करते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की सुंदरता को वर्षा से तुलना दी गई है, वृष्टि के साथ तुलना दी गई है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब बरसात की ऋतु आती है तो बहुत लोग उसमें सुख लेते हैं। हमने देखा है कि गर्मी है, ऊपर से बादल आ गया और वर्षा होने लगी, तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और गांव में तो लोग बाहर निकल के बरसात का आनंद लेते हैं, सीधे चले जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तो भगवान का जो अंगों की सुंदरता है, सर्वांग सुंदरता जो है, कल आपके ग्रुप में चैट में वो मंत्र लिखा है किसी भक्त ने, और अच्छी तरह से उसको लिखा हुआ है। कल वाले मंत्र को आप लोगों ने पढ़ा था, किसी ने चैट में पढ़ाया कल वाला मंत्र?
जी जी बिल्कुल,
बहुत अच्छा मंत्र लिखा था, सबने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। ये है मंत्र आपका, और कल वाला गुम हो गया, आज नहीं आया। ओके, कल किसने लिखा था वो पढ़ेगा कोई अपना, क्या लिखा था? गोपाल चूड़ा
मंत्र कस्तूरी तिलकम ललाटे,
कस्तूरी तिलकम ललाटे,
फिर बक्ते स्तुभम नासाग्रे वर मोतिकम वेणु करे किंकणम। यही है ना प्रभु जी, इसी की बात कर रहे हैं?
हाँ, यही मंत्र था। अब वो बात कर रहे हैं कि ये भगवान का जो रूप जिसके वाणी से उच्चारण हो और मन की आंख से देख ले, तो वो तपते हुए गर्मी में ठंडे बादल के बरसात की फुहारों की तरह अपने आप को शीतल कर लेगा। इसका अर्थ प्रभुपाद ने ये भाव लिखा है कि भगवान के अंगों की सुंदरता एक घनश्याम मेघ से दी गई है, बरसात के बादल से दी गई है, और भक्त उस सुंदरता का बड़ा आनंद लेते हैं और सारी सुंदरताओं का वही सार है। इसलिए सर्व सौंदर्य संगरम श्लोक में था,
कस्तूरी तिलकम लटाते पटले बसते सले कौस्तुभम ना सागरे वर मोतिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदनम सुरलितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेशितो विचते गोपाल चूड़ामणि।
बहुत अच्छा। असल में ये वाणी से कहे और हृदय की आंख से इसका दर्शन करे, सब अंगों पे भगवान के चंदन लगा है, नासिका के नीचे मोती है, गले में कौत्सुभ मणि है, और ऐसे भगवान गोपियों के बीच में खड़े हैं, गोपवेश प्रवेशतम, गोपियों के बीच में खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, इसको अगर मन की आंख से देखो और ये भगवान दिख जाए तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा, संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। ये भागवत से शंकर जी के भगवान के रूप के वर्णन से आप इसको मन की आंख से देखने का प्रयास करो। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि सारी भौतिक और आध्यात्मिक सुंदरता का आगार ही वो है, सब सुंदरता वहां से निकलती है, इसलिए भगवान सबको आकर्षित करते हैं, चाहे भौतिकवादी है वो भी आकर्षित होता है या कोई आध्यात्मिकवादी है वो भी भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कृष्णा का जब पुस्तक लिखा, वो अंग्रेजों के पाश्चात्य देशों में तो किसी को पता नहीं था, प्रभुपाद का ये जो फोटो है ना इसको देख के सब आकर्षित हो जाएंगे। और इंद्रदिव्य महाराज तो कहते हैं कि मैं तो एक कहीं लगी हुई थी निमाइश एग्जीबिशन, उसमें गोपियों के बीच में कृष्ण को देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और वहां से मैं आया और फिर मेरे को कुछ दो सन्यासी भक्त मिले तीन, और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कृष्ण के विषय में कहा, और जब उनसे बात ही कर रहे थे तो वो कहते फिर उनको मैं घर लाया, जाके भोजन खिलाया, और उस वक्त मेरी तनख्वाह जो थी सबका सामान लाया, उन्होंने भोजन खाया, मुझे प्रसाद खिलाया, और वैसे मैं भक्त बन गया। तो कोई भौतिकवादी भी हो तो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएगा, और आध्यात्मिकवादी तो वैसे भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्त तो प्रेम करते हैं, तो इसलिए भगवान को आप सर्व आकर्षक कृष्ण कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं असुर भी आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण की ओर, भौतिकवादी भी हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, इसलिए भगवान को कृष्ण कहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर दे, ये शुभदा का लक्षण आ जाता है उनके अंदर, सब उनको देख के प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सडोज गोस्वामी, प्रभुपाद जी अब एक बड़ी बात लिखने जा रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं सडो गोस्वामी स्तोत्र में लिखा है धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय करो, ये जो हमारे इस रूप सनातन जीव गोपाल भट्टदास गोस्वामी जो थे, ये जो धीर भक्त है और जो अधीर असुर है उन सबको प्रिय थे। अब प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण को असुरों को कृष्ण प्रिय नहीं था, परंतु छह भक्त गोस्वामियों को जो नास्तिक थे अथवा ऐसे वो भी उनसे प्रेम करते थे, जो भी वृंदावन में उस वक्त थे। इसका प्रमाण क्या है? सनातन गोस्वामी के तिरोभाव पे पूरे ब्रज मंडल के लोगों ने बाल मुंडवा दिए, इसलिए जो गुरु पूर्णिमा आती है उसी दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ, उसको ब्रज में कहते हैं मूड़िया पूर्णिमा। पूरे ब्रज के सारे लोगों ने अपने पिता के समान समझ के बाल मुंडवा दिए थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान, ये कितनी बड़ी बात है, के भगवान के भक्तों को भगवान अपने से भी ज्यादा महत्व और महिमा देना चाहते हैं। और उदाहरण दे रहे हैं, काम सब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने किया, और नाम अर्जुन का विजय में, विजय किसने प्राप्त की? अर्जुन ने। काम किसने किया? कृष्ण ने। और भीष्म पितामह से उपदेश दिला के युधिष्ठिर को सब संत महात्माओं के बीच में भीष्म की महिमा कर दी। तो ये भगवान की एक विशेष विलक्षण भक्तों से प्रीति का आदान प्रदान है। काम कृष्ण करते हैं और नाम भक्तों का होता है। और प्रभुपाद ने फिर भगवत गीता से निमित्त मात्र कह दिया सवे साचन। अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र बनो, काम मैंने पहले ही कर दिया है, ये सब मर चुके। अब प्रभुपाद जी हमारे लिए लिख रहे हैं, ए हम सब, काम तो चेतना महाप्रभु ने पहले ही कर दिया है कि जितने नगर ग्राम है सब जगह हरे कृष्ण कीर्तन होगा। पृथ्वी ते आचे यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र होय वे मोय नाम प्रचार मोय नाम। सारी दुनिया के नगरों में शहरों में कृष्ण नाम का प्रचार होगा, ये तो होगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो गंभीर और उत्सुक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं महिमा उनको प्राप्त होगी। काम चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया है, नाम होगा उस भक्त का जो मंदिर निर्माण करेगा, जो कीर्तन करेगा, जो लोगों को भक्त बनाएगा, नाम उसका होगा। लेकिन काम कृष्ण ने कर दिया है। ये है सर्व सौंदर्य संग्रह का अर्थ। अब हम 47-48 श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रीति प्रहस्ता प्रीति प्रहस्त परहस्तापंगम अलकई रूप शोभितम लसत्त पंकज किंजलक्का दुकोलं मृष्ट कुंडलं स्फुरित क्रीट वलया हार निपुर मेखलं शंख चक्र गदा पदम माला मणि उत्तम उत्तम अर्धितमत उत्तम अर्धिमत रिधिमत रिधिमत उत्तम रिधिमत। अब क्या इतना बड़ा शंकर जी, इसको इसलिए शंकर महावैष्णव है। प्रीति प्रहसित, प्रीति का मतलब कृपा करके, मुस्कुराते हैं जब आप, पर हसित मुस्कुराना, और फिर अपांगम, अपांगम का मतलब जो भगवान खड़े होते हैं ऐसे अपने राइट साइड पे बांसुरी को अधरों पे करते हैं, और जो उनकी वाम आंख होती है लेफ्ट आई, वो उसको थोड़ी टेढ़ी करके ऐसे गोपियों की ओर देखते हैं, उसको कहते हैं कटाक्ष। अपांग का अर्थ है कटाक्ष। जो कृपा करके अपने प्रेमी भक्तों के ऊपर कृपा कटाक्ष, एक पूरा राधा कृपा कटाक्ष अस्तोत्र है ऐसे, कृष्ण कृपा कटाक्ष। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कृपा की कटाक्ष करते हैं, कितनी सुंदर है वो। अलकई रूप शोभितम, अलक कहते हैं भगवान के घुंघरालू बाल को। भगवान का मुख मुख है कमल, और घुंघराली अलकें जो है वो भंवरों की तरह उसके ऊपर मंडला पे मंडला रही है, और बहुत सुंदर शोभा है भगवान के घुंघराले बालों केशों की। ये केश भगवान के बहुत सुंदर है। लसत पंकज कंजलिक, लसत पंकज कंजलिक चमक रहा है। लसत मतलब चमकना, और कंजलिक कंजलिक और पंकज, पंकज है कमल के अंदर से जो सौरभ निकलती है, सेफ्रॉन लिखा है प्रभुपाद ने, वो जो सुगंध निकलती है बहुत, वो चमक रही है। दुकुलम मृष्ट कुंड, दुकुलम, ये दुकुलम शब्द जो है ये भगवान की ओतरी के लिए है, जो ऊपर कपड़ा है जिसके जिसकी दो किनारे हो उसको दोकुलम कहते हैं। देखो गोपियों के लिए भी शब्द आता है दोकुलम चोरम, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम ब्रज अंगना नाम दुकुल चोरम। दुकुल चोर का मतलब है कि भगवान गोपियों के ओढ़नी वाला वस्त्र जो ओत्री की तरह चादर की तरह जिसकी दो किनारे होती है उसको चुराते हैं। तो दो कुलम मतलब दो किनारे वाला वस्त्र, जैसे आपने देखा कंधे के ऊपर ओत्री रखते हैं उसके दो किनारे होती है, तो दो किनारे वाला मृष्टा का मतलब वस्त्र। वो कैसा है? चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? जैसे केसर उड़ रही है। भगवान के पीतांबर जो दुकुल फहरा रहा है ना, वो ऐसे लग रहा है लसत पंकज कंजलक दुकुलम मृष्ट। ये एक ही शब्द है। वो पीला पीतांबर फहरा रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि पीली केसर कस्तूरी उड़ रही है, चमक रही है। फिर लिखा है कुंडलम स्फुरित क्रीट वलया, कानों में कुंडल है, स्फुरित क्रीट और सर के ऊपर बहुत चमकने वाला मुकुट पहना हुआ है, वल्य हाँ हाथों में कंगन है, हार गले में हार है, कौत्सव माला है, और गले में हार है कौत्सव माला है और माला वैजंती माला है, निपुर पांव में निपुर है, पायल है, मेखलाम कमर में मेखला बांधी है, पट्टा कमर में करधुनी बंधी हुई है, शंख चक्र गदा पदम। भगवान अगर चतुर्भुज है तो चार आयुध हैं, नहीं तो भगवान के हाथों के ऊपर ये चार प्रकार के चिन्ह होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म का। ये चारों चिन्ह भगवान के चरणों में तो है ही, भगवान के दोनों चरणों में ये चिन्ह हैं, और हाथों में हो तो महापुरुष की पहचान है। माला मणि, और भगवान के गले में बहुत सुंदर माला, बहुत अच्छा दुपट्टा और उत्तम उत्तम आभूषण गले में डाले हुए हैं। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन यहां भगवान शंकर कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि अति सुंदर भगवान का स्वरूप है, जिसके मुस्कुराते हुए मुखमंडल से जो वो कटाक्ष अपने प्रिय प्रिय भक्तों के ऊपर डालते हैं वो बड़ा शोभन्य है। भगवान के काले गुंगराले बाल और उसका पीला पीतांबर जो हवा में फहरा रहा है वो तो क्या केसर, केसर के जैसे केसर का किसी ने केसर को ही बरसा उछाल दिया हो जो कमलों से प्रकट हुई है, और उनके चमकीले कानों के कुंडल, सर के ऊपर मुकुट, हाथों में क्या कहा जाए बाजू बंद, गले में वैजंती माला और भगवान के पायल, पांव में पायल, कमर में करधुनी और सुंदर आभूषण शंख चक्र गदा का चिन्ह ये, और कौत्सव मणि भगवान की छाती के ऊपर। ये जो इसका दूसरे भी भाव बड़े अच्छे लिखे हैं, तो हम पढ़ते हैं आगे। बोले कटाक्ष से क्या भाव है? बोला कटाक्ष से भाव ये है कि भगवान के जो प्रेमी भक्त गोपियां हैं, लिखा है अपने वाम आंख के उल्टी आंख से, लेफ्ट साइड की आंख से वो ऐसे देखते हैं। चक्रवर्ती पाद ने ऐसे लिखा है और प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रसित उपांग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराना और कटाक्ष। वो किसके लिए है? प्रिय भक्तों के लिए और विशेष रूप से गोपियों के साथ। भगवान जब गोपियों के साथ विनोद के भाव में होते हैं, हंसी मजाक के भाव में होते हैं, तब वो अपनी प्रेमी भक्त गोपियों के हृदय को चुराने के लिए कटाक्ष से उनकी ओर देखते हैं। शंख चक्र गदा का जहां तक प्रश्न है, या तो भगवान के हाथ में है या तो भगवान के हथेलियों में, इन चारों के चिन्ह है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं महापुरुषों के अथवा भगवान के अंदर ये चार चिन्ह पाए जाते हैं। अब 49वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंह स्कंद त्विष्टो बिभ्रत सौभग ग्रीव कौत्सवम श्रीया अनपाइनिया क्षिपित क्षिपिता निक्षास्म उर उस उलसता। सिंह स्कंद भगवान के कंधे कैसे हैं? शेर जैसे। त्विष्टो चमक रहे हैं, विभ्रता शोभग चमक रहे हैं भगवान के कंधे, कंधों के ऊपर क्या चमक रहे हैं? त्विष्टो घुंघरालू बाल ऐसे नीचे गए हैं। आपको कभी सुनाया होगा हमने, भगवान के बाल घुंघरालू ऐसे नीचे जाकर फिर ऐसे ऊपर ऐसे मुड़ के ऊपर आते हैं, जैसे हम बूढ़े आदमी जैसे लाठी उठाते ना, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ लकुन, उस प्रकार के भगवान के बाल ऐसे होते हैं। ये बहुत अच्छी एक कविता आई थी, अभी कभी आपको सुनाई होगी हमने। ये तो विभाजन से पहले अलीगढ़ के अंदर एक बार कविता चल रही थी, तो एक मुस्लिम भाई कवि ने आधी कविता बोली, काफिर है वो जो न माने इस्लाम को। बोला इस कविता को पूरा करो, तो मदन मोहन मालवे उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा, लाम की मानंद केशु है घनश्याम के, श्री कृष्ण घनश्याम के जो केश है बाल है वो लाम की लाम लाम जो उर्दू में अरबी में लाम लिखा जाता है ना, वो सीधा सीधा लकीर आके फिर ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है, उसको लाम बोलते, सीधा आके ऐसे हो जाए तो वो डंडे की तरह ऐसे गए। लाम की मानंद केशु है घनश्याम के, काफिर है वो जो न माने इस्लाम को, मतलब कृष्ण के घुंघराले बालों को जो नहीं मानता है वो काफिर है। तो बड़ा उस मुशारे में आनंद हुआ, सबने कहा कि वाह वाह इतना सुंदर कविता में कृष्ण को लाकर और बाजी जीत गए। तो यहां सिंह कंध त्विष्ट हो विवृत, भगवान के जैसे शेर के कंधों के ऊपर चमकीले उनके बाल सुंदर लगते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के कंधों के ऊपर बड़े बड़े घुंघरालू केश जो उनके हैं वो चमक रहे हैं। सौभग ग्रीवा, ग्रीव कहते हैं गले को, सौभग कौत्सव कौत्सव मणि, वो भगवान के गले में शोभायमान है, ये मणि विशेष है। ये भगवान के चिन्हों में दो चिन्ह हैं जो किसी और में नहीं है। वैकुंठ में सबके चार हाथ हैं परंतु कौत्सव मणि किसी के पास नहीं, वो केवल भगवान के गले में होती है। ये वैसे कौत्सव मणि है तो भगवान की, परंतु नाग पत्नियों ने कालिया नाग के वहां से कौत्सव मणि भगवान को दी थी, भगवान ने नीचे गिराई उन्होंने उठा के दे दी, ऐसे लिखते हैं, परंतु वो मणि वहां से प्रकट हुई और भगवान के गले में बहुत सुंदर है। और इस मणि में कोई सोराख वोराख नहीं है, बिना छिद्र वाली मणि है और भगवान के गले में बहुत शोभायमान है। और श्रीया अनाया श्रीया श्रीया अनपाइन्या, सुंदरता जो कभी कम न पड़े सदा बढ़ती रहे, क्षिपित निकष अशम, ये निकष अशम क्या है? कसौटी जिसके ऊपर सोने को घिसा जाता है, काला पत्थर सुनारे के पास होता है, उसके ऊपर सोने को घिस के देखता है कितने क्रेट का है, वो जो जब घिसता है तो उस पत्थर के ऊपर सुनहरी नशा एक लाइन हो जाती है। ऐसे भगवान के छाती के ऊपर वाम भाग में सोनहरी बालों की एक लकीर है, लक्ष्मी का स्थान है, उसको कितना सुंदर लिखा है, श्रिय अनपायन्या क्षिपिता निक्षिता अशमा, अशम कहते हैं पत्थर को, तो वो सोने को परखने वाली कसौटी की तरह, जैसे सोने की लकीर चमकती है, ऐसे भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर लक्ष्मी का चिन्ह चमक रहा है, चमक रहा है उल्सित। तो भगवान के कंधे कैसे हैं, शेर जैसे। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, सिंह ग्रीवा। प्रभुपाद ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है सिंह ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब जिनका स्कंद, सिंह स्कंद, सिंह ग्रीवा, और ग्रीवा का मतलब गला। उनके ऊपर कैसे, ये कैसे कंधे हैं जिनके ऊपर सुंदर मालाएं सजी हुई है, बहुत अच्छा कंठहार पहना हुआ है। कंठहार होता है, इसको कंठी कहते हैं, इसका नाम क्या है, कंठी। ये कंठ तक है तो कंठी, और ये नीचे हो गई तो फिर माला हो जाएगी, फिर छाती तक नहीं, कंठ में होनी चाहिए तो कंठी कहलाएगी। तो कंठहार, नेकलेस कहते हैं कंठहार को, जो कंठ में हो, और उससे नीचे होगा तो उसका नाम कुछ और होता था पहले, दोहरी कहते थे हमारे वहां, बड़ी लंबी होती थी, वो नीचे तक जाती है। और एक शब्द लिखा है अंग्रेजी में, यहां आप देखेंगे किसी के पास अंग्रेजी पुस्तक है, एपियोलेट। एपियोलेट का मतलब दुपट्टा, बहुत सुंदर, भगवान के गले का कंधे के ऊपर जो दुपट्टा होता है वो। और दूसरे भी बड़े चमकीले कंधों के ऊपर चमक रहे हैं, इसके साथ साथ भगवान की कौत्सब मणि और भगवान के सांवले वक्षस्थल के ऊपर सुनहरी श्रीवत्स का जो चिन्ह है लक्ष्मी का, वो ऐसे लग रहा है जैसे कसौटी के ऊपर सोना कसा गया है, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं, उससे अति श्रेष्ठ है। सच तो ये है कि कसौटी की चमक को लज्जित करने वाला ऐसा चिन्ह भगवान के वक्ष स्थल पे है। बोला कंधे क्यों चमक रहे हैं, बोला कंधों के ऊपर ये एयरिंग जो आ रहे हैं ना नीचे कुंडल, ये बड़े चमक रहे हैं। वैसे तो ये लिखा है कि कृष्ण इतना चमकता है कि जो आभूषण है वो कृष्ण की चमक से ज्यादा चमकते हैं। हम आभूषण पहन के सुशोभित होते हैं, और भगवान के ऊपर आभूषण जब पहराए जाते हैं तो आभूषण सुंदर लगते हैं, भगवान इतना सुंदर है। पहुपा जी पहले लिखते हैं कि भगवान के कंधों के ऊपर घुंघरालू बाल है, वो उसके लिए प्रभुपाद ने कहा वेरी वेरी ब्यूटीफुल अपियर, वो बहुत अति प्रिय लगते हैं। जैसे शेर के कंधों पे है ना, ऐसे ही कृष्ण के कंधों के ऊपर, और कृष्ण के कंधों के ऊपर तो कंठहार है, वैजयंती माला है, कौत्सव मणि है, और इनके साथ ये जब भगवान के गले में है तो फिर शेर के कंधों का तो तुलना कहाँ करेंगे, वो तो बेचारा मारा गया। ऐसे भगवान की छाती के ऊपर जो श्री वत्स का चिन्ह है, वो लक्ष्मी जी का जो स्थान है, उसकी जो सुंदरता है, वो कसौटी के ऊपर चमक है ना, उसको लज्जित करने वाली है। तो ये दो बातें प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। एक 50वां श्लोक पढ़ लेते हैं आज, इसके उपरांत क्या है हमारा विभाग, क्या आएगा हमारा वो कल लिख देना। पूररेचक संविघ्नः वलिवल्गुदलोदरं प्रतिसंकरामयद् विश्वं नाभ्यावर्त गभीरया। अब भगवान के मुख की सुंदरता, सर्वांग की सुंदरता कहने के बाद है, पूर्व रेचक, सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं, पूरब रेचक सांस लेना और सांस निकालना, पूरब का मतलब सांस लेना, रेचक का मतलब निकालना। संविघन वली वलाऊ वलघु, और जब सांस लेते हैं तो भगवान का जो उदर है, पेट है, वो कैसा है? बोला वो है पीपल के पत्ते जैसा। पत्ते के अंदर जो लकीरें होती है ना, पत्ते को ऐसे उसके अंदर लकीरें होती हैं, ऐसे ऐसे भगवान के पीपल के पत्ते जैसा या वट वृक्ष के पत्ते जैसा जो दलोदरम वली वलगु दलो संविघन, संविघन का मतलब ऊपर नीचे, सांस लेने से ऊपर नीचे होता है पेट, वहां लंबा लो नीचे पेट ऊपर नीचे होता है, तो कैसा है? वली वलगु, वली वलगु, वली लिखें कि जो उस वक्त पेट के अंदर जो कुछ तीन चार बल आते हैं सांस लेते हुए, वो जो बल आते हैं वो बहुत सुंदर है वलगु। वो कैसे हैं? दल, कैसे दल? दल का मतलब पता, कैसा पता? पीपल के पत्ते जैसे। उदरम, भगवान का उदर ऐसा है। प्रति संकमायत, और फिर उस उदर के अंदर के तीन चार ऐसे लाइन, जैसे आप बहुत सुंदर तीन ऐसी लाइनें भगवान के उदर के ऊपर आ जाती हैं, और उसके बीच में बहुत गंभीर नाभि है, वो गंभीर नाभि के लिए लिखा है नाभ्यावर्त गंभीरा, बहुत गंभीर नाभि है। प्रतिसंकरामयत, और उनके बीच में अंदर ऐसे घूमती घूमती अंदर जाने वाली गंभीर नाभि है। और अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का जो उदर है वो सुंदर है, उसमें तीन लाइनें निकल आती हैं। किसकी? ये आपने देखा है ना, जो जहां कराते हैं, क्या क्लबें बनी हुई है आजकल की, बाहर एक पेट के ऊपर तीन तीन लकीरें दिखाते हैं, मांसपेशियों की लकीरें जो दिखाते हैं ना,
सिक्स पैक,
ये जो
वहां पर भी जिम में दिखाते हैं,
जिम वालों में जो जिन दिखाते हैं ना, वो भगवान के तीन ऐसी बहुत सुंदर लकीरें हैं। और भगवान का इतना सुंदर जो ये उदर है उसकी तुलना पीपल के पत्ते से दी गई है, उसके अंदर जो लकीरें हैं वो लकीरें भगवान के वो लकीरों से दी गई है, और जब सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं तो दिखाई देता है कितना सुंदर है। और फिर उनके बीच में सुंदर गंभीर, गंभीर मतलब गहरी वो नाभि है। और कैसी वो नाभि है? प्रभुपाद ने कहा वो नाभि है जिसमें से पूरा जगत निकला है और सब उसमें समाना चाहता है पुनः। इसका भाव ये है कि वो वही नाभि है जिससे ये सृष्टि, जिससे ये ब्रह्मा बना, और जब प्रलय होगी तो सब उसी के अंदर चला जाएगा। ये हम दामोदर अष्टक में इसको कैसे पढ़ते हैं, अंतिम श्लोक में कोई पढ़ेगा इसको? तब उदारा अर्थ विश्वस्य धामने नमो राधिका ये तवदे अपने, ये है ना? हाँ, क्या है? कौन सा?
नमो राधिका प्रदीये प्रियाय,
फिर नहीं, इससे पहले वाला, इससे पहले लाइन, नमस्ते अस्तु दामने स्फुरित दामने, फिर सौदारा विश्वस्य धामने,
तोयात नाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो
अनंत लीलाय नमो अनंत लीलाय। बस तो जो वहां लिखा है उदर विश्व धाम, जो पाप का उदर है, पेट है, वो पूरे विश्व का धाम है। तो ऐसा नहीं है कि यशोदा ने आपकी कमर में रस्सी बांधी है, पूरे संसार को बांध दिया है, क्योंकि सारा संसार तो आपके पेट में पड़ा है। तो यह नाभि को विश्व की उत्पत्ति और विश्व के संहार और समाप्ति भी वहां होती है और उत्पत्ति भी वहां होती है, उससे तुलना दी गई है। ये प्रभुपाद जी का भाव है। चक्रवर्ती पाद तो सीधा लिखा है कि भगवान आपका उदर पीपल के पत्ते जैसा है, और जैसे पत्ते में जो लकीरें होती हैं वो सांस लेने के समय उसके अंदर वो लकीरें ऊपर नीचे उठती हैं, ये बड़ा सुंदर है, और पूरा विश्व लगता है कि उनकी गंभीर नाभि में, गहरी नाभि में जो बड़ी चक्करवा की तरह जा रही है उसमें जा रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं पूरा विश्व उस कमल के डंडी से उत्पन्न हुआ है जो भगवान की नाभि से निकली, और उस डंडे के ऊपर हुआ कमल का फूल जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिससे पूरे सृष्टि हुई संसार की। और भगवान की नाभि इतनी गहरी है और इतनी गंभीर है कि लगता है पूरा विश्व उसमें समा जाएगा, दोबारा चला जाएगा, और जाता है। क्यों जाता है विश्व? बोले भगवान की सुंदरता उनको आकर्षित करके ले जाती है, और ये भगवान की नाभि और भगवान के उदर के ऊपर जो लकीरें हैं वो सांस लेने के समय जो सुंदर लगती है उनकी महिमा क्या कहें। ये भगवान के सुंदर अंगों का वर्णन है, और प्रभुपाद जी कहते हैं इस बातों को निराकारवादी कैसे जान सकते, उन विचारों को भगवान का रूप नहीं, रंग नहीं, तो कहां उनको पता लगेगा कि ऐसे भगवान की नाभि भी हो सकती है। परंतु शंकर जी ने, भगवान भोलेनाथ ने ये प्रार्थनाएं करके उन निराकार निर्विशेषवादियों को वंचित कर दिया। ये बेचारे निराकारवादी शंकर जी की पूजा तो करते हैं, इन सारे निराकारवादी सन्यासियों को शंकर के उपासक माना जाता है, परंतु वो शंकर की, भगवान शंकर की इन प्रार्थनाओं को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर या भगवान विष्णु के उस गंभीर नाभि और सुंदर उदर का वर्णन कर रहे हैं। शिवव्रंची नूतम, जिस भगवान का पूजन शंकर जी और ब्रह्मा जी करते हैं, वो शंकर जी और ब्रह्मा जी के पूजा करने वाले उस भगवान की पूजा नहीं करते। जिसकी ये पूजा करते हैं निर्विशेषवादी, वो तो करते हैं भगवान विष्णु की पूजा, लेकिन ये सीधा नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, दुर्भाग्य है। इसके साथ आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं, कल यहाँ से आगे। श्याम श्रोणी अधिरोचिष्णु दुकोल स्वर्ण मेखलम समचारव अंग्री जंग उरो निमन जान सुदर्शनम। बहुत सुंदर दर्शन है, चलो इस शर्म ये श्याम का दर्शन कल करेंगे, अब कमर की बात कर रहे हैं। श्रोणी कमर को कहते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
प्रभु जी, एक तो ये जो प्रेयर्स हैं रुद्र गीत, ये पूरा चैप्टर है 79 श्लोक तक।
चलो ठीक है, तो चलेगा, ये बहुत समय है
जी।
थोड़ा ये हमारा कुछ दिन चलेगा, अभी और मेरे ख्याल में 6-7 दिन चलेगा ये, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट आगे पीछे होते रहेंगे, देखेंगे आगे क्या भगवान की इच्छा है।
प्रभु जी, ये चीज पूछनी थी, आपने जो ये आज जो हमने शुरू किया था इसका प्रभुपाद जी का पर्पट, उसमें बताया ना कि द फोर आर्म्स ऑफ लॉर्ड विष्णु हैव डिफरेंट पर्पसेस।
जी हाँ।
चार जो भुजाएं भगवान की, उसके दे हैव फोर डिफरेंट पर्पसेस। चार जो आयुधर हैं, आयुधर जो हम उत्कल क्षेत्र में हम सुनते हैं कि वो शंख क्षेत्र और पद्म क्षेत्र और चक्र क्षेत्र, वो जो अलग अलग है, उससे कुछ कनेक्शन कुछ हम दे सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं?
नहीं, ये दूसरे दृष्टिकोण से है। जैसे क्षेत्र अलग है, जैसे वो शंख के रूप का जगन्नाथ क्षेत्र शंख क्षेत्र है, मतलब वो शंख के आकार का क्षेत्र है, ऐसे दूसरे आकार के कौन से क्षेत्रों का ऐसे वर्णन है कोई?
पदम क्षेत्र कोणार्क है ना, पदम क्षेत्र
कोणार्क पदम क्षेत्र है
जी, और चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर,
भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र,
गदा क्षेत्र जाजपुर है।
अच्छा, ये चार क्षेत्र।
हाँ, वो बताते कथा एक आती कि भगवान ने चार आयुधर जो थे अपने वो वहां रखे थे, तो इसलिए चार क्षेत्र ये उस शेप में माने जाते हैं। तो मैं वही समझना चाह रहा था कि ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या इससे कोई उसका सिग्निफिकेंस या कोई कनेक्शन?
उस उनसे तो नहीं है लगता है। यहाँ जो कहा गया है वो ऐसे सीधा है कि ये दो जो है सिग्निफाई करते हैं भक्तों के लिए, और दो दो है परित्राणाय साधु नाम के लिए, और दो है विनाशाय दुष्कृतान के लिए, या इसका ये भाव है। वहां तो कोई ऐसा वातावरण है नहीं कि कहाँ कहीं असुर और कहीं भक्त हों, शंख चक्र पद्म वहाँ है चार क्षेत्र, ये तो मेरे को ये मेरी नजर से गुजरा नहीं है। ऐसे शंख चक्र क्षेत्र इतना तो ध्यान है, कूर्म क्षेत्र है और क्षेत्रों के नाम है, तो वो जगन्नाथपुरी के अंदर, सात पुरियों में एक पुरी है, पुरी के अंदर है संभवतः, जो जो भगवान की पुरियां हैं विष्णु की, उसके अंदर ये चार चिन्ह सब जगह होने चाहिए। वो उन पुरियों की ये सिग्निफिकेंस हो सकती है। ऐसे हम द्वारका में गए तो वो सात पुरियां, क्या चार सात पुरियां बता रहे थे, उनके शिखर कितने हैं, तो ये वो कोई उसी क्षेत्र की, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं धाम महिमा। ये धाम पुराण में इसकी महिमा कुछ लिखी होगी, एक धाम पुराण भी है जिसमें धामों की महिमा है।
जी बिल्कुल,
लेकिन इससे इसके उसका संबंध नहीं लग रहा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा,
हरे बोल।